नमस्कार साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से जिला समन्वयक दिनकर पातुकर आज हमारे साथ छिंदवाड़ा जिले के तैक्षी संस्थान के सचिव एवं समाज सेवी पीकेश गुरुवे जी विशेष चर्चा के लिए आमंत्रित है। नमस्कार गुरुवे जी।
नमस्कार पातुकर जी।
गुरुवे जी, जलवायु परिवर्तन तथा उससे होने वाले प्रभावों पर आप इसको किस नजरिया से देखते हैं? आज देखने में आ रहा है कि छिंदवाड़ा जिले से 100 विकास खंड में औद्योगिक क्षेत्र है और जो जलवायु परिवर्तन को कितना प्रभावित कर रहा है, इस संबंध में अपनी छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के श्रोताओं के लिए राय दीजिए।
दिनकर जी, जलवायु परिवर्तन ये एक नया विषय है और सबसे पहले तो बात है कि जलवायु परिवर्तन क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। हम बीते कुछ वर्षों से देखते आ रहे हैं, मैं इस वर्ष के बारिश का एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि इस वर्ष हम संसद क्षेत्र की ही बात करें तो किसी क्षेत्र में इतनी ज्यादा वर्षा हुई है कि अत्यधिक वर्षा हुई है और उसने नुकसान पहुंचाया है, तो इसी संसद क्षेत्र के किसी हिस्से में बहुत कम बारिश हुई है। एक ही यानी 50 किलोमीटर के दायरे में बारिश होने के आपको अलग अलग पार्ट आपको देखना पड़ रहा है, यही जलवायु परिवर्तन है। दूसरी बात यह है कि अब हम देख रहे हैं कि साल भर मौसम में जो है इस तरह बदलाव आते रहते हैं कि बारिश कभी भी हो रही है, आसमान में बादल कभी भी आ रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि गर्मी के दिनों में लगता है यार कि बारिश आ गई, कभी विंटर के सीजन में लगता है यार ये बारिश का मौसम है क्या। तो यही जो परिवर्तन हुआ है, एक प्रकृति का अपना एक संतुलन है, जल का संतुलन है, पर्यावरण का संतुलन है और इसमें जो बदलाव आया है इसको आजकल हम जलवायु परिवर्तन के साथ में जोड़कर एक नया शब्द हमने लाया है, जलवायु परिवर्तन। और इसके परिणाम प्रकृति पे तो हो रहे हैं लेकिन इसके परिणाम मनुष्य पर सर्वाधिक हो रहे हैं, जीव जंतुओं पर इसके परिणाम हो रहे हैं। और जलवायु परिवर्तन के चलते कई परिवर्तन ऐसे भी हो रहे हैं कि हमारे जो मित्र कीट है, हमारे जो मित्र जो हमारे प्राणी है, वन्य प्राणी है, इनकी भी संख्या कम होते जा रही है। तो ये जलवायु परिवर्तन एक बड़ा गंभीर विषय है और चिंता का भी विषय है ये आने वाले फ्यूचर के लिए कि हम इससे कितना सुरक्षित रह पाएंगे। इसके लिए आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छा विषय आपने लिया है और इस विषय पर अपन बात करेंगे। आपने औद्योगिक क्षेत्र का विषय रखा है मेरे सामने। छिंदवाड़ा जिले में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र संसार में ही है, ये प्रदेश सीमा से लगा हुआ है और यहाँ सर्वाधिक कंपनियां हैं, लगभग 159 कंपनियां इस औद्योगिक क्षेत्र में हैं और इसमें से अधिकतर जो कंपनियां हैं लगभग इसमें 40-45% कंपनियां ऐसी हैं कि जो केमिकल का यूज करती हैं। इसमें सबसे बड़ी ये कंपनी है जो यहाँ फाइबर का निर्माण करती है, प्रदेश सीमा से लगी हुई है, भंसाली कंपनी है। कपड़ा निर्माण के क्षेत्र में रेमंड कंपनी है, ऑयल निर्माण के क्षेत्र में कंपनियां हैं। तो ये कंपनियां जिस तरीके से यहाँ स्थापित है, ये पर्यावरण प्रदूषण विभाग से सर्टिफिकेट भी लेती है लेकिन जमीनी हकीकत देखा जाए तो जमीनी हकीकत इससे काफी कुछ अलग है। आज भी इन कंपनियों का निकलने वाला वेस्ट वाटर जिनमें केमिकल मिला होता है, ये औद्योगिक क्षेत्र से लगे हुए 2-3 नालों से मिल बह रहा है और ये कन्हान नदी में जाके मिल रहा है और कन्हान नदी क्षेत्र की जीवनदायिनी नदी है। संपूर्ण क्षेत्र का भूगर्भीय जलस्तर हो या पीने के पानी की आपूर्ति हो, ये सब कुछ कन्हान नदी से होता है। और ये औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला जितना वेस्ट पानी है जिसमें केमिकल मिला है, ये सब नालों से होकर लगभग 3 नाले हैं और 3 नालों से ये पानी निकलकर कन्हान नदी में जाके मिल रहा है। इसके परिणाम ये देखने मिल रहे हैं कि इन 3 नालों से लगी हुई जितनी भी भूमि है वो अब धीरे धीरे क्षार युक्त होते जा रही है और जिस दिन इस भूमि में सर्वाधिक क्षार बढ़ जाएगा, ये भूमि उपजाऊ भूमि नहीं, ये भूमि बंजर भूमि कहलाएगी। साथ ही इन कंपनियों से निकलने वाले जो प्रदूषण है, इनकी जो चिमनियां हैं, इनके चिमनियों से जो धुआं निकलता है, इस क्षेत्र में प्रदूषण फैला रहा है और इस क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित तो कर ही रहा है और इसका परिणाम लोगों के स्वास्थ्य पर हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र से लगे हुए जो एक आधा दर्जन गांव है, ये यहाँ के हम डॉक्टरों से जब बात करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि अब यहाँ विविध तरह की बीमारियां लोगों में बढ़ने लगी है और ज्यादातर बीमारियां लोगों में पेट से जुड़ी हुई है जो पानी के कारण होती है और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि पानी में PPM की मात्रा बढ़ रही है। इस क्षेत्र के में जो भी भूगर्भीय जल है उसमें PPM की मात्रा बढ़ रही है और ये PPM की मात्रा बढ़ने से पानी अति कठोर होते जा रहा है और ये लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। ये भी जलवायु परिवर्तन का एक कारण ही है।
जी, जैसा कि आप बता रहे तो आपके कथनानुसार संसद क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के कारण जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार औद्योगिक क्षेत्र ही है। मैं आपसे और जानना चाहूंगा, क्या अवैध उत्खनन जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर रहा है? देखने में आ रहा है कि कौशल विकास खंड में डोलोमाइट मैग्नीज के साथ साथ रेत का अवैध उत्खनन बहुत अधिक मात्रा में होता है। उधर पराचे तरफ कोयला, ऐसी कई खाने हैं, तो क्या ये अवैध उत्खनन और खनन परिवर्तन को प्रभावित कर रहा है?
देखिए, खनन है, खनन में सर्वाधिक ज्यादा खनन तो अवैध ही होता है। ये खनन भी प्रभावित करता है जलवायु परिवर्तन को, क्योंकि ये हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी के गर्भ में जो भी गर्भ की जो भी स्थितियां बनी हुई है, पृथ्वी की भीतर की जो स्थितियां बनी हुई है या ऊपरी जो स्थितियां बनी हुई, जैसे नदियों से रेत निकल रही है, तो एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको छिंदवाड़ा जिले में मैं कन्हान नदी का दूंगा। यहाँ पिछले एक दशक में जिस तरीके से रेत का उत्खनन हुआ है, उससे क्षेत्र से बहती हुई कन्हान नदी ने कई जगह अपनी दिशाएं बदली है और कन्हान नदी से जुड़ी हुई जो सहायक नदियां हैं, इनमें काफी कुछ कटाव हो रहा है। इसके पीछे का कारण यही है कि उत्खनन से नदी गहरी होते जा रही है और इस नदी से जो जुड़ी हुई सहायक नदियां हैं, उनमें पानी का जो प्रवाह है वो गति पकड़ रहा है और पानी का प्रवाह गति पकड़ने से वो नदी का कटाव कर रही है और नदी का कटाव करने से नदी किनारे के खेतों को वो नुकसान पहुंचा रही है। भौगोलिक परिस्थितियां बदल रही है और भौगोलिक परिस्थितियां बदलेगी तो जलवायु परिवर्तन इससे प्रभावित होना स्वाभाविक है, ये नई बात है ही नहीं। और आज आप देख लीजिए, पिछले 15 साल पहले का यदि हम क्षेत्र का भूगर्भीय जलस्तर नापे और आज हम भूगर्भीय जलस्तर नापे तो इसमें कम से कम 1.5 से 2 मीटर का अंतर आ चुका है। इसके पीछे का कारण क्या है कि ये उत्खनन के चलते नदी का जो पानी है, नदी से रेत खत्म होती जा रही है और जो रेत पानी को रोक कर रखती है और भूगर्भ में उसको सिपेज करती है, वो सिस्टम अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है और नदियों के कटाव के कारण अब नदियों में पत्थर बालू के जगह अब आपको जगह जगह मिट्टी और इसमें घास उगती हुई आपको नदियों में जरूर दिख जाएंगी। ये जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा हानिकारक विषय है, नुकसानदेह विषय है, चिंता का विषय है।
गुरु जी, इसके लिए मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो अत्यधिक अवैध उत्खनन हो रहा है, इसके लिए प्रशासन कहाँ तक जिम्मेदार है और इसके लिए जो स्वयंसेवी संगठन खड़े है उनकी क्या भूमिका है?
देखिए दिनकर जी, आपका बड़ा गंभीर विषय है और आपने इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? तो आपने मुझसे कहा है कि प्रशासन कितना जिम्मेदार है। दिनकर जी, इन पर नियंत्रण प्रशासन का जरूर है, लेकिन प्रशासन पर नियंत्रण किसका है? प्रशासन पर नियंत्रण सत्ताधारी नेताओं का है, सत्ताधारी राजनीतिक दलों का है। इस प्रदेश में कार्यरत जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से रेत के कारोबार से जुड़े हुए हैं। और जब सैयब है कोतवाल तो डर काहे का, ये स्थिति प्रशासन के साथ में और अवैध उत्खनन के साथ में लोगों से जुड़ी हुई है। प्रशासन कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन जब ऊपर से दबाव पड़ता है तो प्रशासन भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। ये छुपाने वाली बात नहीं है, जिस तरह से अवैध उत्खनन, फिर चाहे रेत का हो, मिट्टी का हो, माइनिंग का हो, डोलामाइट का हो, जितना अवैध उत्खनन इस जिले में हो रहा है, इसको प्रशासन रोकने की कार्रवाई तो करता है, लेकिन उनकी कार्रवाई कितनी कारगर साबित होती है? यदि इनके अवैध उत्खनन पर करोड़ों रुपए का इन पर अर्थदंड भी लगाया जाए, तो आखिर में जाके वो कोर्ट में, न्यायालय में, या संबंधित अधिकारी जो जो के जिम्मेदार अधिकारी है, उस दंड को या तो कम कर देते हैं या फाइलें दबा के रख देते हैं। आप मुझे बताइए ना कि अवैध उत्खनन करने वाले पर कितने लोगों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है? इसके पीछे का कारण यही है कि इसमें सब राजनीतिक दल शामिल है, और ये राजनीतिक दल शामिल होने से प्रशासन में बैठे अधिकारी अपनी मंशानुसार और प्रकृति को बचाने की मंशा के अनुसार कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए अकेले प्रशासन को दोष देना गलत होगा, इसके लिए हमको जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है, और जो स्वयंसेवी संगठन है जो जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी भी स्थिति यही है कि वो तो एक तो अधिकारहीन है, स्वयंसेवी संगठन अधिकारहीन होते हैं, और वो जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जन जागरण के लिए जो गति आनी चाहिए और जन जागरण के लिए लोगों में जो एक स्वयं उत्स्फूर्त जो क्या बोलते प्रेरणा आनी चाहिए, इसके लिए अभी बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है।
गुरु जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखने में आ रहा है कि संसद क्षेत्र में, और संसद क्षेत्र ही क्यों, पूरे छिंदवाड़ा जिले में बड़ी तादाद में ईट भट्टे संचालित हुए हैं, क्या यह भी जलवायु को परिवर्तन कर प्रभावित करते हैं?
देखिए दिनकर जी, जलवायु परिवर्तन को प्रभावित ईंट भट्टे करते हैं, इसलिए पर्यावरण विभाग ने, प्रदूषण विभाग ने और राज्य सरकार ने, इन लोगों ने ये जो खुले ईंट भट्टे लगते, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब जो है पर्यावरण विभाग से या जिला प्रशासन से उन्हें ही ईंट भट्टों को परमिशन दी जाती है जो चिमनी के ईंट भट्टे होते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा चिमनी के भट्टों को दिए जाने वाली अनुमति जो है, वो कितने ईंट भट्टों को दी है? मुझे लगता है जिले वाले में बमुश्किल से 8-10 ईंट भट्टे होंगे, लेकिन अवैध रूप से जो ईंट भट्टे चल रहे हैं उनकी संख्या सैकड़ों की तादाद में है, सैकड़ों की तादाद में है। हम संसद क्षेत्र की बात लेना, कनाम नदी के किनारे बड़ी संख्या में ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं, और ये ईंट भट्टे जो खुले रूप से जो ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं, सभी अवैध हैं, और इनसे निकलने वाला जो धुआं है, जब ईंट भट्टे लगते हैं और इनसे जो निकलने वाला धुआं है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड लोगों में अस्थमा और अन्य श्वास तंत्र से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती है, वो बीमारियां इनको होती है। तो दिनकर जी, क्या है, प्रशासन नियम तो कर लेता है, कानून कानून भी बन जाता है, लेकिन उसका संचालन आप और हम लोगों को करना है, उसके लिए आप और हम लोग कितने जागरूक हैं, इस पर ये सारी चीजें निर्भर होती है। मैं तो दावे के साथ में कह रहा हूँ कि ये जो खुले ईंट भट्टे लग रहे हैं, ये क्षेत्र के पर्यावरण में, पर्यावरण को, प्रदूषण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये जलवायु परिवर्तन के लिए भी चिंता का विषय है।
गुरु जी, मैं आपसे और ये जानना चाहूंगा कि इन दिनों सर्वाधिक खेती यदि हो रही है तो रासायनिक खाद का उपयोग हो रहा है, अभी में बहुत कम दिखाई दे रहा है जहाँ जैविक खाद की खेती हो या गोबर खाद की खेती हो। क्या ये रासायनिक खाद का अधिकाधिक जो उपयोग हो रहा है, इससे जलवायु परिवर्तन कितना प्रभावित हो रहा है?
देखिए दिनकर जी, खेती में फसलों के लिए जो रासायनिक खाद डाला जा रहा है, वो आपके भूमि की उपजाऊ शक्ति को तो कम कर ही रहा है, लेकिन जब वो बारिश के पानी से रिसा होकर, जब वो भूगर्भीय जल स्तर तक पानी पहुंचता है, तो अपने साथ में ये केमिकल भी लेके जाता है। दूसरी बात है, जो फसलों पे बड़ी मात्रा में और व्यापक स्तर पर और बड़े स्तर पर जिस तरीके से कीटनाशकों का उपयोग होने लगा है, ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं। तो एक तरफ जो रासायनिक खाद है, हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति को कम कर रहे हैं, जमीन को कठोर बना रहे हैं, वहीं जब बारिश का पानी भूगर्भ में रिसाव होता है, तो अपने साथ में ये केमिकल भी वो लेके जाता है। आपको एक मैं उदाहरण बताता हूँ, एक मोनसेंटो करके कंपनी है, जिसका ग्लाइफोसेट नाम का एक स्प्रे आता है जो खरपतवारों पे मारा जाता है। आजकल गवर्नमेंट उसको लेकर नए नए नियम और कानून ला रही है। अमेरिका में इसमें एक बड़ा अच्छा न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि उन्होंने इस मोनसेंटो कंपनी का जो खरपतवार नाशक है उस पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन भारत में चल रहा है। भारत में आज भी सरकार नियम तो लाती है कि खरपतवार नाशक पे हम लोग प्रतिबंध लगा रहे, लेकिन सब चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। और आजकल जिस तरीके से खरपतवार निकालने के लिए किसानों को लेबर चार्ज ज्यादा लग रहा है, लेबर कम पड़ने लगा है, तो खरपतवार नाशक का ज्यादा उपयोग होने लगा है। और जलवायु परिवर्तन का ही असर है कि अब अलग अलग तरीके से बीमारियां, कीट पतंग फसलों पर आने लगे, तो उसके लिए बड़ी मात्रा में और क्या बड़ी मात्रा में और बिना सोचे समझे इतना अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों का स्प्रे के लिए उपयोग किया जा रहा है। किसान कभी इस पर अभ्यास भी नहीं करता कि उसके फसल पे कौन सा रोग आया है, कितनी दवाई देना चाहिए। ये दवा कंपनियां जो है और इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो रासायनिक कीटनाशक बेचने वाले लोग है, ये भी किसानों को गुमराह करते कि चलिए आप ये दवा ले जाइए, आप इतनी मार दीजिए, वो भी सही तरीके से जानकारी नहीं देते। तो खेती में जो रासायनिक रासायनिक खेती जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करेगी। और इससे बचना है तो हमको नैसर्गिक खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना पड़ेगा। लेकिन नैसर्गिक खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती में परिस्थितियां ये है कि किसान आज यदि इस खेती को करना शुरू करे तो उसको 3-4 वर्ष तक जो है काफी कम फसल होती है, उसकी आय कम होती है। और ये आय कम होने से किसान जैविक खेती की और प्राकृतिक खेती की और या शून्य बजट की खेती की ओर जाने के लिए घबराता है, और वो इजी वे में जो रासायनिक खाद मिल रहा है, पेस्टिसाइड मिल रहा है, उसका उपयोग कर वो फसल ले रहा है। ये भी जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है।
गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी द्वारा संचालित जलवायु परिवर्तन के विषय पर अपनी महत्वपूर्ण राय रखी। मोबाइल वाणी द्वारा जलवायु परिवर्तन को लेकर संपूर्ण देश में काम किया जा रहा है, जिसमें आपका योगदान महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, नमस्कार।